आरव को पूरी रात मिस्टर ओबेरॉय के घर पर नींद नहीं आई और वो परेशानी में इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। अगली सुबह होते ही आरव ने वेद को जगाया। वेद ने उठते ही आरव का चेहरा देखा तो उसकी आंखों में हल्की सूजन थी। वो समझ गया था कि आरव को नींद नहीं आई होगी, तो उसने मुंह बनाकर कहा, शादी कर तो रहे हो, अभी सोच लो कि अपने बेडरूम में आशी को एंट्री दे दोगे क्या तुम? नहीं भी दूंगा तो मेरे फ्लोर पर काफ़ी सारे रूम हैं और वो उनमें से ही किसी में रह लेगी, और मैं उसके पास कुछ देर के लिए चला जाऊंगा। बाकी तुम्हें पता है कि मुझे किसी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता। पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूं कि मुझे किसी पर यकीन नहीं है। ऐसे लगता है मुझे किसी उस इंसान ने धोखा दिया है जिस पर मैं खुद से भी ज़्यादा यकीन करता था, आरव ने जवाब दिया। आरव इस बात से अनजान था कि वो लोगों पर यकीन क्यों नहीं कर पाता है। पास्ट लाइफ में उसने जो भी धोखे खाए थे उसके बाद से उसकी सोल उसे सबसे प्रोटेक्ट कर रही थी। खैर जो भी हो, तुम बेहतर सोच लोगे, घर चलते हैं। मामा मामी और नानी को यहाँ भेज देंगे, तुम घर जाकर रेस्ट कर लेना, मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है, वेद ने आरव के चेहरे की तरफ देखकर कहा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। वैसे भी आरव वहाँ नहीं रुकना चाहता था। वेद की बात मानकर आरव फ्रेश होकर नीचे पहुँचा और यही बात उसने मिस्टर ओबेरॉय से कही। मिस्टर ओबेरॉय आरव के चेहरे की तरफ देखकर समझ गए थे कि वो रात भर सोया नहीं होगा। अर्जुन आरव की बात समझते हुए बोले, देखो आयु, आयु की बातों का बुरा मत मानना, वो आशी को लेकर थोड़ी प्रोटेक्टिव है, और तुमने सीधे सीधे उसके सामने बोल दिया कि तुम प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी कर रहे हो, तो बस इसी चक्कर में वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गई। ठीक है, आप देख लीजिएगा, वैसे भी उसे कोई लड़का पसंद है तो वो उसके साथ शादी कर लेगी। मैं मॉम डैड को यहाँ भेज रहा हूँ, आप जल्द से जल्द सब कुछ फिक्स कर लीजिए, मुझे डिले नहीं चाहिए, आरव ने जवाब दिया और फिर उन्हें बाय बोलने के बाद वहां से निकल गया। वेद भी आरव के साथ ही था। उसने नोटिस किया कि आरव घर जाने के बजाय कहीं और ही जा रहा था। वेद ने हैरानी से पूछा, ये रास्ता ना तो हमारे घर की तरफ जाता है और ना ही ऑफिस की तरफ, फिर कहाँ जाने का सोच रहे हो तुम? तुम्हारा तो कोई फ्रेंड भी नहीं है। हाँ, इस वक्त मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरा जाना ज़रूरी है, तुम यहाँ से कोई कैब कर लेना, आरव ने जवाब दिया और गाड़ी रोक दी। वेद को आरव पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो गाड़ी से उतर गया। आरव ने गाड़ी रोककर कुछ कहा भी नहीं और सीधा वहां से चला गया, तो वेद गुस्से में बड़बड़ाकर बोला, मन तो कर रहा है इसकी शादी तुड़वा दूं, कितनी इनोसेंट और क्यूट सी लड़की है और इस साहबजादे के नखरे के खत्म नहीं होते। इसकी शादी तो इसकी बड़ी बहन से होनी चाहिए, वही इसे सही रास्ते पर ला सकती हैं, खड़ूस खुराना कहीं का। वेद वहां से चला गया जबकि आरव इस वक्त हॉस्पिटल जा रहा था। वो चंडीगढ़ के सबसे बड़े हॉस्पिटल लाइफ केयर में पहुंचा और वहां जाते ही उसके कदम साइकेट्रिक वार्ड की तरफ बढ़ रहे थे। आरव वहां जाते ही एक डॉक्टर के केबिन के अंदर घुसा जिसके बाहर डॉक्टर नेहा शर्मा लिखा हुआ था। नेहा शर्मा 35 साल के करीब थीं और एक साइकेट्रिस्ट थीं। आरव को देखते ही वो हैरानी से बोली, मिस्टर खुराना, आप खुद हॉस्पिटल तक आए हैं? आपने कहा था कि आप सेशन लेने के लिए हॉस्पिटल नहीं आएंगे और मुझे आपके घर आपकी क्लाइंट बनकर आना पड़ेगा, फिर ऐसा क्या हो गया जिसने आपको यहाँ तक आने पर मजबूर कर दिया? बस ऐसा ही समझ लीजिए डॉक्टर कि कुछ बड़ा ही हुआ है, आरव ने परेशान स्वर में जवाब दिया और फिर डॉक्टर नेहा को सब बताने लगा। मैंने आपको बताया था कि मुझे काफ़ी टाइम से अजीब से ड्रीम्स आ रहे हैं, मैंने उन्हें ड्रॉ भी किया था। हाँ, मुझे याद है, आप सपने में खुद को फंसा हुआ पाते हैं जहां आसपास ब्लास्ट हो रहे हैं, आग लगी हुई थी और आप दौड़ते हुए उस आग में जा रहे हैं और मिसेस खुराना कहकर चिल्लाते हैं। क्या आपने इससे आगे कोई ड्रीम देखा? नेहा ने पूछा और आरव को बैठने का इशारा किया। आरव उसके सामने काउच पर बैठा हुआ था और पिछले कई सालों से वो इसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा था। आरव को काफ़ी साल से यही सपना आ रहा था जो कुछ देर पहले डॉक्टर ने बताया। हालांकि सपने में उसे सब कुछ धुंधला नजर आता था, उसे अपने अलावा सपने में और कोई दिखाई नहीं देता था, आरव ने जवाब में कहा। मैं एक लड़की से कल पहली बार मिला और मैं उसे मिसेस खुराना कहकर बुला रहा हूँ। यकीन मानिए डॉक्टर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, पर फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे मैं उसे जानता हूँ। उसने गलती से मुझे छुआ और वो टच जाना पहचाना था। हो सकता है वही आपकी मिसेस खुराना हो। क्या आपने उससे बात की? उसे भी इसी तरह के कोई ड्रीम आते हों या कुछ और? डॉक्टर नेहा ने सीरियस होकर पूछा तो आरव ने नाम ही सुर हिला दिया। आरव कुछ पल रुककर बोला, मैं आपसे ट्रीटमेंट जरूर करवा रहा हूं डॉक्टर, लेकिन आपकी थियरी अभी भी मेरी समझ से बाहर है। मैं रीबर्थ में यकीन नहीं करता, लेकिन फिर कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मेरी समझ के बाहर है। मैंने कभी स्केचिंग नहीं सीखी, फिर भी अपने सपने और बाकी चीज़ों को मैं ड्रॉ कर पाता हूँ इतने अच्छे से जैसे कि जैसे मैं प्रोफेशनल रहा हूँ। मुझे लोगों की भीड़ में जाने से डर लगता है, किसी पर यकीन नहीं होता, ऐसा लगता है कि हर शख्स मुझे धोखा देना चाहता है। सबके दो चेहरे हैं, जो सामने कुछ और हैं और पीछे कुछ और, जबकि किसी ने आज तक मुझे कोई धोखा नहीं दिया है। आरव डॉक्टर को सब बताते हुए थोड़ा इमोशनल हो रहा था, उसकी मेडिकल कंडीशन उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। नेहा ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा,
आप रिलैक्स कीजिए, आपका बीपी हाई हो रहा है। अगर आपको उस लड़की के साथ ऐसा कुछ एहसास हो रहा है तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप बार बार उससे मिलकर बातें कीजिए, शायद आपको कुछ और भी याद आ जाए, नेहा आरफ को समझा रही थी और फिर उसने उसे कुछ दवाइयां दी। नेहा से लगभग एक घंटे बात करने के बाद आरफ हॉस्पिटल से निकल रहा था, तभी उसे सामने से आयु आती दिखाई दी। वो उससे बात तो नहीं करना चाहता था, पर नेहा की एडवाइस पर आरफ के कदम आयु की तरफ पड़ रहे थे।